प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, ये है रेडियो प्लेबैक इंडिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है, जहां पे आपसे मुखातिब है ये आपका दोस्त आपका साथी सजीव सारथी। आपका परिचय करा दें हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान से। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के इस दौर की सबसे सशक्त आवाजों में से एक गायिका, जिन्हें आइटम गीतों की आवाज के नाम से भी जाना जाता है। स्वागत करें सुरीली और दमदार आवाज की मालकिन गायिका रितु पाठक का। रितु आपका हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में और रेडियो प्लेबैक इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है।
मुलाकात जरूरी है के और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी फॉलोअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप आप सब ठीक है।
जी रितु, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि आपने बहुत सारे एक के बाद एक हिट गीत गाए हैं, बल्कि इसलिए कि आप इतने सारे हिट गीत, बल्कि मैं कहूँगा कि आपका जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% है, उसके बावजूद भी आपके कदम जमीन पर मजबूती से टिके हैं अभी तक। क्योंकि आज का दौर, जो मैं काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज ले चुका हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो गायक होते हैं वो अपनी कामयाबी को सर पर चढ़ा लेते हैं, बट यू आर स्टिल सो डाउन टू अर्थ, मतलब ये जो खूबी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। एमपी में एक छोटा सा स्मॉल टाउन है सिवनी, मध्य प्रदेश, सिवनी गोपालगंज, वहाँ मेरा बॉर्निंग ब्रॉटअप हुआ था और वहाँ के लोग काफ़ी शांत हैं और नेचर बहुत ही उनका सॉफ्ट होता है। यही बात है। और मेरे बचपन से मेरे मम्मी पापा के जो संस्कार हैं, सभी लोग हमारे घर में बहुत डाउन टू द अर्थ हैं और सबकी नेचर ऐसे ही है, मतलब बहुत ही सीधे और सिंपल लोग हैं हम लोग। और मैं जहाँ तक मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट जो होता है उसको सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। और मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मेरे पैर ज़मीन में ही टिके रहें, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी पैर उठाने की कोशिश करूँगी तो शायद मैं फिसल सकती हूँ अपने कैरियर में। तो शुरू से ही, और मैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लड़की हूँ, बहुत ही नॉटी हूँ, बहुत ही बबली किस्म की लड़की हूँ, तो लोगों का प्यार मेरे साथ है और जिस तरह से लोगों ने मुझे सराहा है, मेरे गानों को सराहा है, तो उससे मुझे एक सीख मिलती है कि हमेशा मुझे ज़मीन पे रहना चाहिए और तभी मैं लॉन्ग लॉन्ग लाइफ जी पाऊँगी, लॉन्ग रेस तक काम कर पाऊँगी।
जी रितु, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लंबे समय तक इंडस्ट्री में हॉट फेवरेट रहने वाली हैं। अच्छा तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपके जीवन में जो संगीत की शुरुआत है वो कब और कैसे हुई और कैसे आप एमपी से मुंबई आई?
द एज ऑफ 4 मैंने गाने की शुरुआत की। मेरे पापा का एक छोटा सा बैंड था गांव में ही, 5 स्टार के नाम से, तो वहाँ पे वो लोग लोकल शोज करते थे, दुर्गा उत्सव में, गणेश उत्सव में, वहाँ पे छोटे छोटे शोज में पापा परफॉर्म करते थे, बुआ भी गाती थी, घर में म्यूजिकल का माहौल था, संगीत से सब लोग जुड़े हुए हैं, भाई भी गाता है, मेरी बहन बहुत अच्छी डांसर है, तो सब लोग ही लाइक बहुत शौकीन है संगीत के, तो उनको देख के मुझे भी गाने का बहुत शौक लग गया। तो 4 साल की एज पे मैंने अपनी बुआ के कॉलेज गैदरिंग शो में परफॉर्म किया, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, बहुत तालियां मिली। फिर धीरे धीरे ऐसे ही गाने का शौक बढ़ता गया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब ही इज़ द वन जिनकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, इस मुकाम तक हूँ। पापा मुझे कॉम्पिटिशन्स में ले जाते थे और छोटे मोटे शो वहाँ पर मैं करती रहती थी। जब लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया, लोगों की तालियां हमेशा मिलती थी और मैं हमेशा कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आती थी, तो मेरा जोश धीरे धीरे बढ़ते गया और ऐसा रुझान हुआ संगीत में कि मैं एक दिन गाना नहीं गाती थी तो शायद मैं खाने के बिना रह सकती हूँ बट गाने के बिना नहीं रह सकती। तो धीरे धीरे ऐसे ही मेरी शुरुआत होते गई। फिर मैं जैसे बड़ी हुई, 18 साल की एज में मैंने इंडियन आइडल 2007 में मैंने पार्टिसिपेट किया, सो वहाँ से मैं एक के बाद एक राउंड मैं क्लियर किया और पियानो राउंड तक मैं पहुँची वहाँ पे, और वहाँ से एलिमिनेट हो गई। फिर इंडियन आइडल में जैसे मैं एलिमिनेट हुई, फिर मैं गांव वापस चली गई। उसके बाद फेमैक्स एक शो आया था सब टीवी पे, हालांकि वो इतना हिट नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने काफ़ी एपिसोड्स में परफॉर्म किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि गांव से आके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे टॉप 5 तक मैं पहुँची, और वहाँ से मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए, दलीर मेहंदी जी से, सौम्या राव जो इंडस्ट्री की बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर हैं, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे हमेशा इनकरेज करती थी। तो मैं जब एलिमिनेट होके गांव वापस गई उस शो से भी, तो एक दिन उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें बॉम्बे आना चाहिए, और शी सेड कि रितु यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू सिंग लाइक अमेजिंग, सो तुम्हें आना चाहिए। और जितने मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सीख के भी बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, तो तुम्हारी जो सिंगिंग है वो गॉड गिफ्टेड है, तुम एफर्टलेस गाती हो, तुम में वो बात है कि तुम अच्छी प्लेबैक सिंगर बन सकती हो अगर तुम हार्ड वर्क करो, ट्राई करो, मुंबई आ जाओ। उनकी बात मुझे लगी, और शायद वो एक मैसेज था गॉड की तरफ से। तो मैं कुछ दिनों में बॉम्बे आई और स्ट्रगल करना शुरू किया, और यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ पे इस शहर में आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, यू नो, सो बस। लेकिन धीरे धीरे वो जोश मेरा बरकरार था, घर से सबका सपोर्ट था, मेरे साथ सबकी दुआएं थी, सो मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। फिर ऐसे शुरुआत हुई, मुंबई में आई, और मैंने सबके पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर मिलने बहुत मुश्किल थे, तो मैंने सबके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढे, फिर सबको फ़ोन करना शुरू किया, प्रीतम को, शंकर एहसान लॉय को, विशाल शेखर, सबको मैं फॉलो करते गई। कोई फ़ोन नहीं उठाता था, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे 10,000 सिंगर्स डेली आते हैं स्ट्रगल करने, और म्यूज़िक कंपोजर्स भी इतने बिजी हैं अपने काम को लेके कि, और रियलिटी शोज़ की वजह से इतनी भीड़ हो गई है, तो वो भी किस किस को रिस्पॉन्स करेंगे, और फिर उनको पता कैसे चलेगा कि मैं भी अच्छा गाती हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ अगर मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ। तो बस ऐसे ही, लेकिन आई थिंक जब आपका लक साथ देता है और आप सच्ची नीयत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो आपको मिलती है। तो एक दिन मैंने शंकर जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने हमेशा मेरे फ़ोन का रिस्पांस दिया कि आप मुझे अगले हफ्ते कॉल करो, 4 महीने बाद कॉल करो। बहुत टाइम लग गया उनसे मिलने में, आई थिंक 2 साल तो लग गया होगा उनसे मिलने में, लेकिन 2 साल के बाद मैं फाइनली उनसे अपॉइंटमेंट मिल गया, और मैं स्टूडियो पे गई उनसे मिलने। उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। 5 मिनट के टाइम में मुझे अपना, उस टाइम पे मेरे माइंड में यही था कि ये 5 मिनट में मुझे उनको इम्प्रेस करना है, और मुझे कुछ ऐसा गाना है कि मैं बस एक जादू कर दूँ और मैं यहाँ से फेल होकर ना जाऊँ। तो मैंने उनको 5 मिनट के टाइम में एक पंजाबी गाने का एक मुखड़ा सुनाया, और एक गाना सुनाया था जिसमें आपकी रेंज का पता चलता है। तो मैंने उनको दोनों गाना सुनाया, और वो बहुत इम्प्रेस हुए, और उन्होंने कहा कि बहुत सिंगर्स कॉल करते हैं लेकिन मेरे पास टाइम ही इतना नहीं है, मैं काम कब करूँगा, और अगर मैं रिस्पॉन्स करने लगूँ तो सुबह से शाम फ़ोन पर ही बीत जाएगी। तो उन्होंने मेरा नंबर सेव किया। ठीक 6 महीने बाद मुझे उनकी ऑफिस से कॉल आई, और उन्होंने बोला कि रितु एक गाना करना है, और अगर तुम कल मुंबई में हो तो कल रिकॉर्डिंग के लिए आ जाए। तो मैं गई, हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी, पहली बार इतने बड़े म्यूज़िक कंपोज़र के लिए गाना गाना है। तो नेक्स्ट डे मैं पहुंची स्टूडियो पे, और मैंने गाना सुना। गाना बहुत लो रेंज पे था, मेरे स्केल पे नहीं था, फिर भी मैंने ट्राई किया और माइक पे गई और गाना रिकॉर्ड हुआ। शंकर सर ने मुझे पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि ये स्क्रैच है, अगर तुम्हारी वॉइस में अच्छा लगेगा तो डायरेक्टर को पसंद आएगा तो तुम्हारी वॉइस रखेंगे। बस मैंने अपना बेस्ट किया, उसके कुछ 2-3 महीने बाद गाना रिलीज़ हो गया, और वो गाना था वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। सो मेरा एज अ प्लेबैक सिंगर ये फर्स्ट सॉन्ग था, जो आके ही इतना हिट हो गया और फर्स्ट प्लेबैक दीपिका पादुकोण और लारा दत्ता पे मैंने किया. तो आई वॉज वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई स्टिल थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ कि पहली फिल्म में ही जाके लोगों के दिलों तक मेरी आवाज़ पहुँच गई.
ओके रितु, तो उस पहले गाने को याद करते हुए थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए सुना दीजिए एक बार, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएंगे.
श्योर श्योर, आई वुड लव टू. नॉटी 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 रात आई, तू है मैं हूँ एंड लॉट्स ऑफ तन्हाई, ड्रामा ये भार पड़ गया लव में, कांटा गड़ गया जाने कब तक सताएगा. वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा. थैंक यू.
बहुत खूब रितु, बहुत अच्छा आपने इस गाने को निभाया और ये बाकी गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था. रितु, आपने बताया कि लगभग 3 साल आपने मुंबई में स्ट्रगल के दिन देखे और उसके बाद आपको ये एक हिट गीत मिला, तो ये जो 3 साल थे ये जाहिर सी बात है आसान तो नहीं रहे होंगे, तो कैसे आपने अपने आपको मोटिवेट करके रखा इन 3 सालों में, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है यहाँ पे, तो कई बार जो गायक होता है वो थोड़ा सा अपने हौसले उसके टूट जाते हैं, और आपकी फैमिली की तरफ से भी बताइए कि कैसा उनका इस दौरान सपोर्ट रहा.
मुंबई आई थी तो मैंने कुछ एक्चुअली प्लान ही नहीं किया था कि मुझे क्या करना है, बट माइंड में ये था कि एक दिन अच्छा काम करना है और जितने भी बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करना है. तो उन लोग तक पहुँचने में मुझे बहुत कठिनाई हुई, बहुत टाइम लगा, लेकिन निराशा सिर्फ बहुत कभी कभी हुई लेकिन थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाती थी. तो जितना मेरा खाली टाइम रहता था तो मैं जो भोजपुरी के जो छोटे छोटे काम होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए, क्योंकि मैं जब पहली बार माइक पे खड़ी हुई थी तो मुझे ऐसा मतलब मुझे आभास हुआ कि मुझे बहुत टाइम है, मतलब प्लेबैक सिंगिंग करना और स्टेज शो करना इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो मैंने यही सोचा कि मुझे सबसे पहले एक्सपीरियंस चाहिए ताकि मैं किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के सामने गाऊं तो मैं हताश ना हूं और मेरा कॉन्फिडेंस ना हिले. तो मैंने बहुत सारे भोजपुरी गाने गाए, बहुत सारे जिंगल्स गाए, पंजाबी रीजनल उड़िया जो भी होते हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे उस स्ट्रगल दौरान के बीच. तो निराशा नहीं हुई, घर वालों का पूरा पूरा सपोर्ट था, पापा का पूरा पूरा सपोर्ट था. उन्होंने कहा देखो टाइम टाइम की बात है तो कभी हताश मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कोई भी चीज़ आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम हुआ है, जो कामयाब हुए हैं, सब ने बहुत स्ट्रगल किया है. तो बस घर वालों का सपोर्ट था और मेरा जुनून जिसने मुझे हारने नहीं दिया. और चल मैं सोचती हूँ कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है. लोगों ने एक्चुअली जो मैं गाती हूँ वो सुना नहीं है, तो मैं अभी उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही हूँ. आइटम सॉन्ग्स तो काफ़ी गा चुकी हूँ, कि मेरा सॉफ्ट रोमांटिक जॉनर में बहुत इंटरेस्ट है, उस तरह के गाने मैं करना चाहती हूँ, सेमी क्लासिकल टोन के गाने. तो या ऐसे ही मैंने अपने सफर की शुरुआत की और डिसअपॉइंटेड कभी कभी होती थी बट ज्यादा नहीं.
जी रितु, एक्चुअली मैं यही बात कहने वाला था, क्योंकि मैंने आपको इंडियन आइडल में भी सुना है, तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत तरह के गाने गा सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड में जाहिर सी बात है एक ठप्पा सा लग जाता है. जो मुझे लगता है इस बहुत जो आपकी इमेज आज की डेट में है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो था शायद वो जलेबी भाई गाना था. तो पहले उसी गाने की एक बार बात कर लेते हैं कि वो गाना जो था वो कैसे आपके हिस्से में आया और कैसे एक एक पूरा नेशन वाइड हिट बन गया, थोड़ा सा उस गाने के बारे में बताइए.
जलेबी भाई बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाना बन गया मेरे कैरियर के लिए और मेरी लाइफ लॉन्ग मैं जलेबी भाई के नाम से जानी जाऊँगी. और इनफैक्ट अभी भी कुछ लोग ऋतु नाम जानते ही नहीं हैं, उन्हें यही पता है जलेबी भाई मेरा नाम है. जलेबी भाई आनंदराज आनंद सर का गाना है, उन्होंने कंपोज किया है और लिरिक्स भी उनके हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग बनाया उन्होंने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आनंद जी, उन्होंने मुझे इस गाने में मेरी वॉइस सिलेक्ट किया और मुझे ये गाने का चांस दिया. इंदर कुमार सर जो डबल धमाल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी वॉइस पास की। सो ये गाने का स्टोरी ऐसा है कि आनंद राज आनंद सर, सबसे पहले मैं मुंबई आई थी तो उनसे ही मिली थी और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत बूस्टअप किया कि रितु तुम्हारी आवाज़ बहुत दमदार है, तुम बहुत आगे जाओगी। सो उनके लिए मैं काफ़ी गाने गाती थी, मतलब जो वो स्क्रैचेस बनाते थे तो मैं वो गाने गाती थी और हमेशा लाइक स्क्रैचेस ऐसा होता है कि आप स्क्रैच पहले गाते हो बाद में दूसरा सिंगर डब करता है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं निराश हो जाते हैं कि यार हमने गाया था और ये कोई और हमारा गाना गा गया। तो मैं बट मुझे सर जब भी मुझे बुलाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से जाती थी और उनका गाना रिकॉर्ड करती थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक दिन गाते 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 मेरा कोई गाना तो फाइनल होगा। तो मेरे मन में हमेशा एक पॉजिटिविटी, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी। तो आनंद राज आनंद सर से मैं सबसे पहले मैंने उनसे मीटिंग की थी जब मैं मुंबई आई थी, तो उनके लिए मैंने काफ़ी गाने गाए काफ़ी। हालांकि मुझे ब्रेक मिला शंकर एहसान लॉय से, लेकिन आनंद जी के साथ मैं काफ़ी पहले से जुड़ी थी, काफ़ी पहले से काम कर रही थी। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन आनंद सर ने मुझे हमेशा बूस्टअप किया कि देखो तुम गाती रहो, एक्सपीरियंस भी होगा और धीरे धीरे तुम ग्रो करोगी, तो एक दिन ज़रूर तुम्हारा कोई ना कोई गाना लगेगा और जब ठीक वक्त आता है, जब आपका लक साथ देता है, जब आप पूरी नीयत से काम करते हैं तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो पापा जब जाएगा गाना रिलीज़ हुआ, उसके बाद मैंने प्रीतम सर के लिए रजिया गुंडो में फंस गई गाया था जो मल्लिका शरावत पे पिक्चराइज हुआ था। तो ऐसे ही आनंद जी गाने बनाते रहते थे और हमेशा मेरी वॉइस ट्राई करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि मेरी वॉइस रह जाए एट दी एंड। सो ये गाना बना और जलेबी बाई के लिए मुझे आनंद सर ने बुलाया और गाना रिकॉर्ड किया। मैंने 15 मिनट में गाना गा दिया। उन्होंने ब्रीफ ये दी थी कि देखो बहुत ही इंटरटेनिंग सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, इस फिल्म में मल्लिका शरावत परफॉर्म कर रही है इस गाने में, सो तुम्हें बस मज़े लेके गाना है, ज़्यादा सोच के नहीं गाना है, बस जाओ और गो फॉर इट। तो मैं गई और गाना रिकॉर्ड किया। आनंद जी ने मुझे बहुत बहुत कंफर्ट किया रिकॉर्डिंग के वक्त, उन्होंने बहुत बूस्टअप किया मुझे। तो मैं गई और मज़े से मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया एंड गाना शूट हुआ, मेरी आवाज़ फाइनल हो गई। सो दैट्स हाउ आई गॉट द सॉन्ग एंड वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ और वो गाने का जो हिट था, मतलब इतना बड़ा हिट हो गया, मतलब मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू सिंग दिस सॉन्ग।
जी रितु, तो हम अब ये गाना सुनाते हैं अपने श्रोताओं को भी, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज़ में एक बार जरूर बनता है।
श्योर। दीवानों ने देख ली, देखी मेरी कारीगरी, जुल्फों से रात मैंने की, चेहरे से चांदनी करी, कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, तब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, चाचा 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 चिकने हाय चिकने मुझ पे फिसल गए, काका 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 कितने हाय कितनों के दम निकल गए, हाय तौबा क्या होगा जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई।
तू कौन देश
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है और हम हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, आप हैं अपने दोस्त अपने साथी सजीव सारथी के साथ। दोस्तों आज के हमारे जो मेहमान हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात चल रही है वो हैं इंडस्ट्री की सबसे कामयाब गायिकाओं में से एक रितु पाठक। तो रितु एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने इतने सारे आइटम गीत गाए हैं, आइटम गीतों के साथ हमेशा ये एक दिक्कत रहती है कि जो कहने की थोड़ी सी अश्लीलता का जो पुट होता है उसके अंदर वो कई बार बहुत बारीक होता है और कई बार में जो आइटम गीत और जो अश्लील गीत होते हैं उनमें वो ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो आप के सामने जब कोई गीत आता है तो आप सोचते हैं कि क्या ये गाना मुझे गाना चाहिए या नहीं?
ऐसे बहुत गाने आते हैं, जो भी गाने मेरे पास आते हैं मैं पहले उनका ट्रैक मंगवाती हूँ, पहले उनके लिरिक्स मंगवाती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ। तो जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वो गाती हूँ, जो नहीं लगता है उसके लिए मैं मना कर देती हूँ। लेकिन जितने भी गाने मैंने अभी तक गाए हैं आई थिंक सब ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं और उनमें जितने भी गाने हैं, मतलब जलेबी बाई है, गंदी बात है, पापा जग जाएगा है, सारे लिरिक्स मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग लिरिक्स हैं, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। और मेरा मानना ये है कि आइटम सॉन्ग एक कंप्लीट फिल्म जो होती है उसमें एक मसाले का काम करता है। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब भी स्टेज शो में परफॉर्म करती हूँ तो मैं बहुत सारे स्लो नंबर्स गाती हूँ लता जी आशा जी के, और जब जब मैं आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती हूँ तो लोगों का रिस्पांस, जो तालियों का रिस्पांस है और जो उनका इंथुजियाज्म है वो और बढ़ जाता है। तो आइटम सॉन्ग या मैं बहुत पॉजिटिव लेती हूँ आइटम सॉन्ग को, और या जो बहुत अश्लील लिरिक्स होते हैं वो मैं नहीं गाती हूँ। लेकिन लक अच्छा ये रहा है कि जितने भी गाने अभी तक मैंने गाए हैं सारे गानों के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एंटरटेनिंग है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। क्या मार्केट में जब कोई गाना आता है तो एक के बाद एक फिर वैसे जॉनर के गाने बनने लगते हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोग उस म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं। तो आइटम सॉन्ग भी वैसे हैं, लोग पसंद करते हैं आइटम सॉन्ग को, और जब भी कोई पार्टी का या खुशी का माहौल होता है तो वहाँ आइटम सॉन्ग भी बजते हैं और लोग बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत डांस करते हैं और खुशियों के माहौल में ये गाने बजते हैं।
जी रितु, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके अभी तक सभी गाने ऐसे ही आए हैं जिन्होंने श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया है, उन्हें बहुत खुशियाँ दी हैं। एक गाना मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा जो आपने गाया था और वो ऐश्वर्या राय की आप आवाज़ बनी थी उस गाने में, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंदीदा है। थोड़ा सा उस गाने के बारे में ही बताइए, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है और हो सके तो थोड़ा सा वो भी सुना दीजिए हमें।
खूबसूरत गाने की याद दिलाई है आपने, ये छान के मोहल्ला सारा देख लिया इस गाने का नाम है, प्रीतम सर ने इस गाने का म्यूजिक किया है और बहुत ही मज़ेदार गाना है और होली की सिचुएशन पर ये गाना शूट किया गया था। डेफिनेटली आई सिंग फोर लाइन्स। मिलाना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, मिलाना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, छान के मोहल्ला सारा देख लिया, जवानी चढ़ती जाए करेगा कौन उपाय, जवानी चढ़ती जाए करेगा कौन उपाय, छान के मोहल्ला सारा देख लिया, जली तो पूछी ना कसम से कोयला हो गई ना, जली तो पूछी ना कसम से तौबा हो गई ना।
वाह बहुत खूब रितु। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ रोमांटिक गीत और कुछ अलग जोनर के गाने भी गाना चाहते हैं, तो ये बताइए कि ये जो बात है ये आप अपने संगीतकारों को किस तरह से बताने वाले हैं ताकि हम श्रोताओं को आपकी आवाज़ में कुछ अलग तरह के गाने भी सुनने को मिले?
जी मुझे रोमांटिक जॉनर के गाने और थोड़े सूफियाना अंदाज के गाने गाना बहुत पसंद है। शुरू से मैं लता जी को आइडल मानती हूँ और उनके जो गाने हैं आई थिंक उसमें बहुत ठहराव होता है, और आशा जी की मैं भक्त हूँ बहुत बड़ी, सो वो रोमांटिक गाने बहुत अच्छे गाती हैं और किसी भी तरह के गाने, सो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। हालांकि अभी गाने वैसे बहुत कम बन रहे हैं और रोमांटिक जॉनर के गाने हैं या कोई सॉफ्ट वॉइस के गाने होते हैं तो डेफिनेटली लोग श्रेया घोषाल को याद करते हैं। सो मेरी मेरी अभी कोशिश ये है कि मैं एक रोमांटिक गाना सिंगल करूं, उसके बाद मैं सारे म्यूज़िक कंपोजर्स, जितने भी म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूं, तो उनको मैंने अपनी वॉइस भेजा और सबने मेरा ये जॉनर सुना हुआ है. मैंने एक गाना गाया था तेवर फिल्म में, राधा नाचेगी, म्यूज़िक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, तो उसका जो एडलिप गाया है मैंने वो बहुत सॉफ्ट है और सेमी क्लासिकल है. वो जो पार्ट है पर्टिकुलर, कान्हा की मुरली है सो जी, कान्हा की मुरली है सो जिया में, तो वाजिद सर ने ऑलरेडी मेरी वॉइस सुनी थी. तो इस गाने का जब मुझे मौका मिला तो उन्होंने कहा कि ऋतु, हमने तुम्हें माइंड में रख के गाना बनाया है कि तुम वेस्टर्न भी गाती हो और सॉफ्ट जॉनर के भी गाने गाती हो. सो सबने ऑलरेडी सुना है मेरा और सब लोगों को पता ही है, तो डेफिनेटली जब कोई वैसा, प्रीतम सर ने भी कहा है कि डेफिनेटली वैसा कोई गाना कभी रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल कॉल मी. और जो गाने अभी मैं प्लान कर रही हूँ, मैं कुछ गाने अपने सिंगल करूँगी और प्राइवेट एल्बम करने की प्लानिंग है, तो उसके जरिए मैं लोगों तक अपनी जॉनर जो मैं गाना चाहती हूँ वो आवाज़ पहुँचा सकती.
जी रितु, डेफिनेटली, और मुझे यकीन है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप आगे भी बहुत ज़बरदस्त गाने आपके हिस्से में आने वाले हैं, और जब आप कैरियर अपना देखेंगे तो यकीनन उसमें हिट से हिट गीतों की भरमार होनी चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं डेफिनेटली दुआ करूंगा इस तरह से कि ये हो. और आपने बहुत अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. जाते जाते, वैसे तो सब लोग अच्छी बातें करने की बात करते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ गंदी बात करें. आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाने की तरफ इशारा कर रहा हूँ.
थैंक यू सो मच. मुझे भी सजीव जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप रियली तारीफ के बहुत काबिल हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं. सो बेस्ट विशेस टू यू एंड जितने भी रेडियो प्लेबैक इंडिया के फॉलोअर्स हैं सबको मेरी बेस्ट विशेस. और सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सब मुझे ब्लेस करते रहिए और कीप लविंग मी एंड कीप ब्लेसिंग मी, ताकि मैं जितने भी व्यूअर्स हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, रेडियो प्लेबैक इंडिया के, सबको मैं अच्छा अच्छा काम करके, अच्छे अच्छे गाने गा के आपके कानों तक पहुंचाती रहूं. सो लास्ट सॉन्ग फॉर यू ऑल. बिड़ पिक नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली अक्कर कब जाए भी तो पिया रे, राजा बैठा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोटा हटम वाली भाव नहीं दिया रे, एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडिया है भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात. थैंक यू सो मच.
थैंक यू रितु. दोस्तों, हमें यकीन है कि रितु से आज मिलकर आपको वही आनंद आया होगा जो उनके सुपरहिट गीतों को सुनकर आता है. दोस्तों, एक मुलाकात जरूरी है इस सीजन का अंतिम एपिसोड था. जाहिर है कि हम नए सीजन लेकर फिर लौटेंगे और फिर एक बार चलेगा मुलाकातों का सिलसिला. कब होगा ये दूसरा सीजन, इसकी सूचना आपको समय आने पर हम अवश्य देंगे. फिलहाल के लिए मुझे, यानी अपने दोस्त, अपने साथी सजीव सारथी को दीजिए कुछ महीनों का अवकाश. और हाँ, तब तक आप मुझसे मेरे दूरभाष नंबर 9811036346 पर संपर्क में रह सकते हैं. साथ ही आप किन नए कलाकारों से मिलना चाहते हैं ये भी आप मुझे लिख सकते हैं. तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खूब सारा संगीत सुनें और जीवन का भरपूर आनंद लें. और इसी अच्छे नोट पर मैं साइन ऑफ होता हूं, आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी. अगली मुलाकात तक नमस्कार.
दिया है।